ओम शांति। 8 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे हो। कैसे पता लगेगा? जो याद में रहने वाले होंगे वो बहुत रमणीक होंगे और बहुत मीठे होंगे। रमणीक माना जो खुश रहता हो और सबको खुश रखता हो, और मीठे माना उनका व्यवहार ऑटोमेटिक सबको पसंद आएगा। खुशी में रहे सर्विस करेंगे, खुशी में रहकर क्या करेंगे? सर्विस करेंगे। खुश नहीं रहेंगे तो सेवा में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब कोई भागता रहे, इधर जाए उधर जाए उधर जाए, पर तो खुद टेंशन में हो, खुद गुस्सा आ जाता हो तो वो सेवा नहीं कर सकता। कर रहा है वो तो सेवा करने का मतलब सफलता भी तो मिले ना। अब बकरी है दूध दे, और दूध देकर फिर क्या करे, उसमें मैंगनी कर दे या टांग मार दे। कहते हैं ना वे दूध दिया पर तो टांग मार दिया,
फैला दिया।
मेरे वो सारी बात ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि वो कर कहा तो यही जाता है ना, गाय है बकरी है कोई भी है, मतलब दूध दे के उसको बिखेर दे, आपने काम तो किया वो तो उसके बाद व्यवहार ऐसा कर दिया। नहीं मतलब आपने व्यवहार का काम किया किसी का वो तो उसके बाद साथ में दो गाली निकाल दी, गुस्सा दिखा दिया, नफरत दिखा दी या कुछ, तो क्या कहेंगे? करे किराए पर पानी फेर दिया। तो मतलब इसी तरह जो भी है, मतलब कहने का मकसद हमें समझने वाली बात है कि बाबा जो कह रहे हैं ना कि सर्विस करे, खुशी में रहे सर्विस करेंगे। तो खुश नहीं है बेशक कितने भाषण करे, कितना भाग भाग कर ज्ञान सुनाए, परंतु व्यवहार सही नहीं तो सेवा नहीं होने वाली, सेवा नहीं होगी वो। मतलब ना रमणीक होना बहुत जरूरी है, मीठा होना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? मतलब आपको नशा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है, ज्ञान आप औरों को भी बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं और बहुत कह रहे हैं कि हाँ आप वाकई में बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो, बहुत अच्छी तरह हमें समझा रहे हो, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? कौन सी चेकिंग करनी चाहिए हमें? ज्ञान की मस्ती तो रहती है लेकिन चेक करो कि देही अभिमानी कितना बने, अपने आप को आत्मा कितना समझते हैं, कितनी देर आत्मिक व्यवहार आप कर पाते हैं, कितनी देर आत्मिक स्मृति में रह पाते हैं, स्वमान में रह पाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान तो बहुत सहज है लेकिन योग में माया विघ्न डालती है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। ज्ञान में माया नहीं आती है, ज्ञान में तो जितनी देर ज्ञान सुनते रहो अच्छा 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 बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए जब बैठकर समझाना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वहां माया अपना रुकावट डालती है। ज्ञान तो बहुत सहज है लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना, गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, ऐसा ना हो कि माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे। याद है आपको कल माया के लिए चूही के लिए बाबा ने क्या कहा था कि कहीं न कहीं वो खा लिया, वो कर लिया जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं। ये है माया। बाकी माया चुई कोई बाहर से नहीं आती है जो आके काटे, मतलब हमने वो खा लिया जिसके लिए मना है, वो कर लिया जिसके लिए मना है, तो माया है। माया का है, मेरा दिल कर रहा था, मेरा मैंने खा लिया या कर लिया कुछ भी जो बाबा का कहना नहीं माना। भाई जो स्वास्थ्य के लिए बाबा ने जो हमारे शरीर को सेट रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, उन चीजों को खाने के लिए मना थोड़ा किया, उन काम को करने के लिए मना थोड़ा किया जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे। खाने के लिए मना नहीं किया, पर तो उन चीजों को खाने के लिए, उन चीजों को प्रयोग करने के लिए, उन काम को करने के लिए मना किया जिससे हमारे शरीर का सत्यानाश हो सकता है। हाँ जी, उसके लिए गदा लेके खड़े रहना है। अब हम गदा रख देंगे तो चूहिया तो आएगी, तो चूहिया अंदर आएगी तो चूहिया जो है ना कुछ नुकसान कर जाएगी, कुतर जाएगी और पता भी नहीं पड़ेगा। अपनी नब्ज आप ही देखनी है, अपनी नब्ज आप ही देखनी है, दूसरा कोई देखेगा नहीं। शिव बाबा नहीं करता आके नब्ज देखे बतावे ना, नब्ज देखने का तरीका बता देता है कैसे पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी आ गई है। अपनी नब्ज आप पे देखो और दवाई खाओ। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। नब्ज क्या देखनी है, हमारा बाबा के साथ हड्डी प्यार है, कहीं किसी और के साथ तो प्यार नहीं हो जाता। किसी और का कहना माना तो कहेगा अच्छा जा, कहना मानते ही प्यार खत्म। मेरा कहना मानना था, तूने जाके दूसरे का कहना माना, अब भुगत सजा। कितना समय हम याद में रहते हैं, कितना समय याद में रहने का मतलब क्या है, कितना देर मैंने बाबा की श्रीमत पर काम किए। और जैसे ही मैंने बाबा की श्रीमत से हटकर कोई भी काम किया वो बाबा याद नहीं। एक भी काम, एक भी संकल्प, मैंने एक भी विचार अपने में ऐसा कर लिया जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है तो मुझे बाबा याद नहीं। एक बोल, एक कर्म, कोई भी मैंने ऐसा किया जो बाबा की श्रीमत से अलग है तो बाबा याद नहीं। ये हमें क्या करनी है, अपनी नब्ज खुद देखनी है। और नब्ज देखने का तरीका क्या है, एक संकल्प, एक बोल, एक कर्म ऐसा ना हो जाए जो बाबा की श्रीमत पर ना, जैसे हो लिख दो, इतने से इतने देर तक मैंने आपकी श्रीमत के विपरीत काम किया, मेरी नब्ज खराब थी, इतने घंटे मेरी नब्ज खराब थी, और जितनी देर मैंने बाबा की श्रीमत पर सारा काम किया, सोचा बोला किया तो बाबा याद। चार्ट में देखने का तरीका वंडरफुल। गीत, जले क्यों ना परवाना, जब जल उठी शमा महफिल में, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, ये गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। तुम क्या बन जाते हो, हसीन। कौन बनाता है हाँ बाप बनाता है। तो बाबा तुम्हें कितना सुंदर बनाता है, तो ऐसे सुंदर बनाने वाले बाप का, ऐसे बाप का तो बन जाना चाहिए ना, ऐसे बाप से तो प्यार करना चाहिए ना, जो तुम्हें आया है क्या बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए। हसीन कहा जाता है दुनिया में फीमेल को, और पुरुष को सुंदर बनाए तो उसे क्या कहा जाता है, ये उर्दू का शब्द है, उसे कहा जाता है हुसैन। सुंदर पुरुष को कहा जाता है हुसैन और सुंदर स्त्री को कहा जाता है हसीन। समझ गए? हाँ हाँ, मतलब सुंदर स्त्री के लिए हसीन शब्द, बाबा के सामने बहनें बैठी हैं तो बाबा ने हसीन शब्द का प्रयोग किया, यदि बाबा के सामने भाई बैठे होते तो बाबा हुसैन शब्द का प्रयोग करता। परंतु आत्मा के लिए
उर्दू का शब्द है
दोनों ही, हाँ मतलब हाँ मतलब हुसैन का जो ताजिया पीटते हैं, मतलब वो बहुत सुंदर था, बहुत श्रेष्ठ था, उसको उसके लिए रोते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमें समझना है कि हसीन भी उर्दू का शब्द है और हुसैन भी उर्दू का शब्द है। तो बाबा हमें इतना सुंदर बनाता है, इतना श्रेष्ठ बनाता है, अब ऐसे बाप को का क्यों नहीं बन जाना चाहिए? जो बाप शाम से सुंदर बनाता, हिंदी में बात कर रहे हैं, वो उर्दू में बात थी, ये हिंदी में बात हो रही है कि जो बाप हमें शाम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, चित्र भी ऐसे बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं, मनुष्य समझते नहीं कि ये हो कैसे सकता है, ये हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा, श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण है, सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह शाम कैसे हो सकता है, फिर वह शाम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा श्याम क्यों बनाया है? कारण चाहिए, कारण चाहिए। ये जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके, ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं, जैसे चित्रों में दिखाते। शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसा कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं जहां जाके नारायण सो जाए, ठीक है ना। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कोई पांच मुंह का बना देता है तो कोई सैकड़ों मुंह का भी बना देता है। हाँ आपने
दिखाया था उसने,
किसने दिखाया?
मंदिर
वो ऐसा है कि बने हुए ना, असली तो कोई नहीं देखा ना।
अब नाग का पता नहीं वो कैसे उसको मोटिवेट किया, लेकिन उसके पांच फण थे।
मेरे भाई बात समझने वाली ये है कि आपने आर्टिफिशियल बने हुए देखे ना, असली कोई सांप देखा जिसके पांच मुंह हो?
उसकी कमर तोड़ रखी सारी बहुत भारी, वो मतलब वहीं पर टहल रहा है।
अच्छा,
आगे नहीं जा सकता,
जीवित है मतलब ना?
जीवित है।
अच्छा, मतलब आपने जीवित देखा, मैंने देखा। मैंने नहीं देखा, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ कि हमने नहीं देखा, क्योंकि आपने दो दो मुंह वाले तो देखे जो आगे भी पीछे भी दोनों तरफ चल सकते हैं,
वो तो दो मुंह होती,
दो मुंह, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि हमारा बात समझने का है, जो देखा है। अब सहस्त्र मुंह वाला, पांच मुंह वाला सांप तो चलो ठीक है, दो मुंह चार मुंह हो गए, ठीक है। पांच मुंह वाला सांप तो उसके बाद जो है ना, बाबा कहने का मतलब है कि ऐसा कोई होता नहीं कि पांच मुंह सहस्त्र मुंह दस मुंह आठ मुंह लगा देते हैं। आर्टिस्ट को लगाने में क्या देर लगती है? पांच मुंह वाला हनुमान बना दिया, पंचमुखी हनुमान
तो बना सकते हैं, लेकिन
हाँ देखने में चाहिए तब, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कोई होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कैसे चित्र बैठ बनाए हैं, बस उन्होंने बना दिया, जैसे कह दिया किसी ने उसने बना दिया। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, इनमें इन बातों में कुछ भी रखा नहीं है कि भी ना कोई सांप हो ऐसे गोल गोल लपेटी बना दे और उसके बीच में जाके नारायण सो जाए। अभी यदि नारायण को सोना है तो उसको तख्त वाला बेड नहीं मिल सकता, जरूरी वहीं जाके सोना है और वो भी समुद्र के बीच में। हम लोग को आखिर कहीं तो सहन वो समझ में आए बात कि हाँ भी इसका। अब बाबा समझाते इसका मतलब ये था कि पांच विकार जो थे उनके अंदर फंसकर मनुष्य नरक में फंसा पड़ा था, ठेन काला हो गया था। अब जब उन विकारों पर वो जीत पा लेता है तो वही उसकी सेवक बन जाते हैं। पांचों विकार उसके क्या बन जाते हैं? सेवक बन जाते हैं। वो उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं कि ठीक है जी, अब जो आप कहोगे हम वो करेंगे। मतलब सांप के सिर पर नाचना कृष्ण का, या साशिया बनाकर उसमें सोना, ये स्पष्ट करता है कि उन पांच विकारों को अपने अधीन कर लिया, तब वो निश्चिंत सोता है ना, निश्चिंत होता है ना। तो तब मतलब ये बातें जो है ना, इस बात के कृष्ण के रूप में नाचना, मतलब विकारों पर जीत पाली।
हाँ,
तो उसको
डांस कर रहा है
तो मतलब जीतना। जब जीत पा लिया तो जीत का मतलब है उसे अपना गुलाम कर लिया। अब वही जो हम आतंकवादियों को देखें कि आतंकवादियों पर हम कंट्रोल कर लें तो वही सारे हमारे सहयोगी बन जाए ना। हमें मारने वाला काम तो नहीं होता ना, हमने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया तो हमारे उतने हैंड्स बन गए, सेवा का सहयोग देने वाले, काम करने वाले, आगे बढ़ाने वाले। आतंकवाद में अपनी शक्ति को हम नष्ट करें और हम उसको आतंकवादी भावना अपने दिमाग से निकाल दें तो सहयोगी बन जाए, कितना देश उन्नति कर सकता है।
कल भाई मोदी ने न उसने योगी ने अनाउंसमेंट किया, अब जो श्रापक से आतंकवादी है वो सरेंडर हो जाए वरना उसका हाथ बुरा होगा। वो एक मुसलमान के लिए बहुत भारी प्रॉपर्टी, उसको कल बॉर्डर चला दिया सारे पे।
हाँ।
और उसको गोली, जब उसको पुलिस पकड़ने गई उसने गोली चला दी बाप बेटे दोनों ने, एक दैनिक पुलिस का भी मर गया लेकिन उनको दस्ती बना के गोली मार के उठा लाए, जेल में डाल रखा उसने हॉस्पिटल में। अब वो ये कह रहा कि वो ऐसे आदमी हाथ खड़े करके ना और आज सरेंडर हो रहे, भाई हमें बख्श दो, हमसे जो गलती हुई सब माफ करो और हम आगे की आपके सहयोगी रहेंगे। तो वो बात सही बात है।
हाँ,
कर दिया
जब सहयोगी बन जाए तो वही जो देश का नुकसान कर रहे हैं वही देश का भला करने वाले बन जाएंगे, उन्नति करने वाले बन जाएंगे। तो यही है गोरे से काला बनना। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है कि उन्होंने सुधरना अब नहीं है, ठीक है, उन्होंने अब सुधरना नहीं है क्योंकि सुधर जाए तो फिर स्वर्ग कैसे आएगा, स्वर्ग ऐसे बन जाए तो स्वर्ग फिर आएगा कैसे। अब स्वर्ग बनने वाली कोई बात नहीं है, वो दब सकते हैं परंतु वो फिर फूटेंगे और फिर आतंकवादी बनेंगे। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ उनको फिर रिपीट करना है क्योंकि अब समय है बिगाड़ खाते में जाने वाला, ठीक है। तो उनको जो शुरू से लेकर इस समय तक नाटक में जो जो हुआ है अच्छा बुरा वो सब वैसे का वैसा ही रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं था, नहीं खाते थे, इतना हैरान नहीं होते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वे फिर भी जरूर होगा सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ ना सके। ये तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते, वे सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो ये सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भाई, भाई गीता में लिखा है कि कौरव और पांडव ने क्या किया, बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया, तीनों खत्म। ये सब आपस में दुश्मन है, तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिट पिट बोत, अंदर अंदर
खिटपिट होगी,
है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे,
एक दो को
उड़ा देंगे, यही कर रहे हैं। अब जो चल रहा है, जो वो हमास में कर रहा है और वो यूक्रेन पर कर रहा है, वो उस पे कर रहा है, वो उस पे कर रहा है, घर बैठे बैठे को उड़ा रहे हैं ना। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, पांच तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे, अभी तो पांच तत्व कितने नुकसान करते हैं। वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, प्रकृति क्या हो जाएगी, दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। ये भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिब्रेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते, तो भी शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि जिसकी हम जयंती मना रहे हैं वो कभी आया होगा। वो कौन है जिसकी हम जयंती मना रहे हैं,
जयंती मंदिर तो आया है,
आया है और मना रहे, वो है कौन, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। वो भी पता नहीं है उन बेचारों को, कब आया ये पता नहीं है, क्या किया ये पता नहीं है, कैसे किया कुछ भी तो पता नहीं है। समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाली होगी, जो प्रजा बनने वाली होगी, उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। उनको कितना समझा लो, कितना ज्ञान सुना लो, कितना मुरलियां सुन ले, वो सुधरेगा
नहीं।
जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे, बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है, लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए, हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। मुरली चलाने का मतलब ज्ञान सुनाए, हम ऐसी युक्ति से बाबा की बातें समझाएं जो सबको बात समझ में आ जाए। बच्चे नंबर वार तो हैं ही, ये है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए,
रोज स्टडी करनी,
पढ़ाई पढ़नी चाहिए, छुट्टी थोड़ा करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये भी तो, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है, देखो शुरू में कितने छूटकर आए, घर बार छोड़कर झमेले से निकलकर आ गए, फिर कई चले, उनको समझ में नहीं आया और वो छोड़कर चले गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दांत, ये दांत शब्द सिंधी भाषा का है, ठीक नहीं, दांत का मतलब होता है गॉड गिफ्ट, देवताओं द्वारा दी गई शक्ति, उसको बोलते दांत, ठीक नहीं, मिली हुई है इनको भगवान ने जो है ना ये गुण ये शक्ति ये विशेषता दी है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि स्वयं परमात्मा ने प्रवेश किया है। अब भी दुनिया वाले समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छे हैं, हाँ, परंतु ये नहीं समझते कि भगवान खुद आके पढ़ा रहा है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं, बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूं, ये मैं हूं, बस ज्ञान का सागर मैं हूं, ये भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं, ड्रामा प्लेन अनुसार ये भी ड्रामा में नूंद है, ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं, ज्ञान नहीं उठाते, ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी फिर भक्ति भी अच्छी। यदि कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता तो भक्ति कर लो भाई, कम से कम कुछ तो कर रहे हो, ठीक है ना, या तो ज्ञान उठाओ नहीं तो भक्ति में रहो। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को भक्ति छोड़ने के लिए मत कहो, कुछ तो अच्छा कर रहा है, ना करने वाले से कुछ तो कर रहा है ना, मनुष्य सुधरते तो हैं, है ना, क्योंकि नोट किया गया पूरे विश्व के अंदर कि जो चाहे किसी भी धर्म में है वो ना, जो किसी धर्म में नहीं है ना उनसे अच्छे, ऐसा है कहने वाला कोई किसी विचारधारा को मानता है, जैसे मान लो जैन धर्म को माने, बौद्ध धर्म को माने, इस्लाम को माने, जेहोवा को माने, अब जो जिस भी धर्म में है मुसलमान कोई खराब नहीं है, कुरान मैंने पढ़ा है, कुरान कोई खराब नहीं है, परंतु ये जो है ना जिहाद वाले जो है ना ये अलग है, ये मुसलमान नहीं है,
ये यहाँ पे मुसलमान नहीं है,
नहीं नहीं, जिहाद जिहाद वाले एक जिहाद क्या है, उन्होंने एक बुक लिखी है शरीयत, ठीक है नहीं, उसके अंदर लिख दिया कि नियम, और वो जो है ना जाके लोगों को कहते हैं हम नियम सिखाएंगे, और वो नियम की आड़ में उनको जो है ना क्या बोलते हैं ये उल्टी बातें सिखाते हैं कि आप जो है ना मंदिरों को तोड़ो, मस्जिदों को तोड़ो, ये लव जिहाद, ये सारी जिहाद की बातें आती है, मतलब ये सारे ये खराब है। मुसलमान जो रियल मुसलमान है,
कलकत्ता के अंदर परसों जो है ये अपने स्कूटी पर पैर दिए हैं, मारपीट हुई है, सिर काट दिए हैं, वो रोहिंग्या मुसलमान बता रहे हैं,
हाँ हाँ रोहिंगे,
ममता कह रही है कि मेरा कसूर नहीं है, ये रोहिंग्या जो मुसलमान आए,
हाँ रोहिंगे रोहिंगे है, मतलब बात सारी यही है, वो रोहिंगे है, वो रोहिया है, वो जो है ना असम साइड से भी पल्ली तरफ जो है ना जो है वहां से आए हुए हैं, वो जैसे है ना हमारे यहाँ पर घुसपैठी है ना, ये रोहिंगे भी जो है ना घुसपैठी हैं, मतलब कहने का है कि उनका काम है जाकर के गड़बड़ करना। अब इसमें ममता क्यों कराएगी, उसको पता है, पर तो अब करा हो गया है तो
ममता का यार है,
तो फिर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि ममता करा रही है, और ममता कहेगी कि मैंने नहीं कराया, अब हम तो सच को जानते नहीं, हुआ तो है ना, जो भी हुआ वो राजनीति में तो ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर ठेकड़ा फोड़ना, ठीक है ना, तो उनका पार्ट है, वो हमारा पार्ट नहीं। हमारा मतलब क्या है कि बाबा कहते बच्चे मनुष्य सुधरते तो है ना, कुछ तो कम कहीं भी धर्म में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, चाहे वो सत्संग नहीं है, वो तो कुछ तो सुधरते हैं। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं, फिर भी देवता नहीं बनेंगे ना, फिर भी वो क्या हैं, भक्त हैं। आज कल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत दिवाला मार देते, बड़े बड़े टिक्के लगा के रखे होंगे, मतलब बड़ा बड़ा पोप दिखाई देगा या किसी भी धर्म का ठेकेदार दिखाई देगा, और अंदर जो है ना गंध भरा पड़ा होगा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मरेंगे, ऐसे आपको ब्रह्मा कुमार भी बहुत सारे मिल जाएंगे। नाम ब्रह्मा कुमार है परंतु अभी गुण सुधरे नहीं, चरित्र सुधरा नहीं है, तो वो फिर दिवाला तो मारेगा ना, वो तो गलत काम करता रहेगा ना। पास्ट का कर्म तो है, पिछले कर्मों का फल भी सामने आता है, तो दिवाला मारते हैं। अब पीछे कोई बुरे कर्म कर आए हैं, अब सजा आ जाइए तो दिवाला तो मिलेगा ना। नाम तो ब्रह्मा कुमारी का बदनाम होगा ना, इसमें ज्ञान का कोई तैलुक नहीं, इसमें ज्ञान का कोई तैलुक नहीं, क्योंकि ज्ञान समझ में ही उनको आएगा जिनके कर्म अनुसार, ड्रामा पार्ट अनुसार उसको समझना है। जिसको नहीं समझ में आना है उसको समझ में नहीं आएगा। ये सोचना कि भी हम इसको इतने देर से समझा रहे हैं, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस आत्मा का पार्ट है, जितना उसको समझ में आना है उतना आएगा। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्री मत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे, फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, मीन्स यज्ञ में स्वाहा करना है। जितना यज्ञ में स्वाहा करेंगे वो हमारा अगले कल्प में चला जाएगा, वो हमको मिलेगा, और जो हम बैंक में रख के जाएंगे वो यही पड़ा हुआ सड़ जाएगा। बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, हुआ राही रेल का, मतलब आ गया तैयार हो करके, चलो जी, क्योंकि लाटरी खोल गई तो नारायण बनना है भाई, भगवान मुझे नारायण बनाने के लिए आया है, छोड़ो इसको। ये नहीं पता था कि अगली दिवाली में भी 100 साल लग जाएंगे, ये तो बाद में पता लगा कि 100 साल मेहनत करनी है भैया तेरे को, चाहे शरीर छूट भी जाए तो भी मेहनत से ना छूट सकता। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा, चलो यहां से। ऐसे नशा चढ़ता था, अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते, नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद भी नहीं करते, जो बाबा को निमंत्रण देते थे, बाबा आप हमारे आओ हम प्रोग्राम करेंगे, आप एक बार आओ बाबा, आप हमारे यहाँ एक बार आओ, परंतु वही
बाबा को याद ही नहीं करते,
याद ही नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं, मक्खन लगाए मेरे को। बाबा को भी अच्छा लगता है कि मेरे को कहे मक्खन लगाए। जो कभी याद नहीं करते, याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है, देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगुली लगा दे, जैसे बच्चे बैठे थे ना बस में, छेड़ देंगे बस लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अंगुली लगाए माया आके तुम्हें छेड़ देवे, ऐसे ना हो। और माया छेड़े भी तो छेड़ना नहीं है, उसको कहना रुक जा, नहीं तो डंडा उठा के उसको मारो, गदा उठा के लाओ, खड़े हो जाओ। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, माया काटती ऐसे है जैसे चूहा। चूहा ऐसे काटता है जो बल खून निकल आए पर पता ना पड़े, पता ही ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा माफिक, हम भी तख्त नशीन बने, हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादे हैं, पैदल चलने वाले हैं। फिर एक को अपनी अपनी नब्ज, हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे, अबे तो मैं क्यों आऊं देखने के लिए तुम्हारी नब्ज, मैंने तुम्हें नब्ज देखना सिखा दिया, नब्ज देखना सिखा दिया, अब अपनी नब्ज खुद देखो। क्या सिखाया नब्ज देखने के लिए, बस श्रीमत पर नहीं चल रहे हो तो नब्ज खराब, नब्ज खराब है तुम बीमार हो, ठीक नहीं। जैसे भैंस की गाय की होती है ना, बैठ कर जुगाली कर रही है तो स्वस्थ है, और जुगाली नहीं कर रही है तो वो बीमार है। तुम अपने को देखो, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं, हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं, हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए बाबा को, जिगरी हड्डी से दिल से कितना याद करते हैं। कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं, बाबा कहते ये हो नहीं सकता, झूठ बोलते हो। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, अब हमें क्या करना है। परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया, क्या मतलब है बाबा की याद बिगर कुछ काम किया, बाबा की श्रीमत से अलग कोई भी काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। एक संकल्प भी आपने बाबा की श्रीमत से अलग किया, एक बोल भी मुंह से निकाल दिया वो जो बाबा ने मना किया है, एक कर्म कोई ऐसा कर दिया जो बाबा ने मना किया है, आपको बाबा याद नहीं। ये है नब्ज देखने की विधि। थर्मामीटर कहो, स्टेथोस्कोप कहो, जो मर्जी कहो, आपको इससे पता लग जाएगा कि आपकी नब्ज ठीक है या नहीं। और इसके लिए हाथ तक पकड़ना नहीं, आत्मा को तो हम पकड़ नहीं सके ना, परंतु बिना हाथ टच किए, बिना स्टेथोस्कोप लगाए, बिना थर्मामीटर लगाए पता लग जाए कि कितना बुखार है। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक होगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे, बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है, बहुत थोड़े हैं, सबको शौक नहीं। जिनको सर्विस का बहुत शौक है, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई, हम सब आत्माएं क्या हैं, भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि ये है सब आत्माओं का बाप, ये है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परम आत्मा निराकार, हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़ा बनाते हैं, इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती, कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है, आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए, ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन, परंतु कराए कौन। आत्मा सो परमात्मा कहना, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या,
आत्मा सो परमात्मा कहना,
हाँ इससे तो नहीं हुआ ना। आत्मा मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा, इससे पता क्या लगा, मैं कैसे परमात्मा हूं, मैं कैसे आत्मा हूं, आत्मा के क्या गुण है, आत्मा क्या करती है, आत्मा क्या नहीं कर सकती है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। तब तो अलग होंगे, तब तो सच्चाई समझ में आएगी। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि मैं क्या हूं, राइट में, अब मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, ये दुविधा है ना दुनिया में।
हाँ,
आत्मा कहती है कि परमात्मा ही सब कुछ है, आत्मा सो परमात्मा, और कहने वाले कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है,
एक है, तो भी परमात्मा में भी परमात्मा,
हाँ तो मतलब कहने
आत्मा वैसे भी कहता है इसी बराबर कि आत्मा सबकी एक है,
नहीं ऐसा कभी नहीं कहा,
नहीं
एक जैसी है, एक जैसी और एक में तो अंतर है ना भाई, भाई आपका आत्मा का साइज, मेरा साइज और परमात्मा का साइज बराबर है, ठीक है, परंतु आप अलग आत्मा हो, मैं एक अलग आत्मा हूँ, परमात्मा एक अलग आत्मा है, और आत्मा सो परमात्मा कहना माना आत्मा ही परमात्मा है, तो ये मिस्टेक है, अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता को बावजूद जब आप अपने आप को परमात्मा समझते हो, फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन तो नहीं हुआ। जब आप शब्द दो प्रयोग कर रहे हो, आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा कोई अलग चीज है ना, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिसके लिए हम मंदिर में जा रहे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं, जिसको हम पुकार रहे हैं, जो आता है हमें पतित से पावन बनाने के लिए, तो आत्मा सो परमात्मा तो नहीं हो सकता, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन तो नहीं हुआ, ये अपनी कोई जानकारी तो नहीं मिली, ये नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं, वही बैठ समझाते हैं, फिर उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी है, आत्मा का परिचय बताया जाता है। अब परमात्मा का भी बताते हैं, उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप, सब आत्माओं से भी ऊंचा, वे छोटा बड़ा हो ना सके, साइज बराबर है, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सुप्रीम एक होता है, सुप्रीम दो नहीं होते, परम एक होता है, परम दो नहीं होते, सोल माना आत्मा है, वो भी आत्मा परंतु वो परम है, परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, परमात्मा सबसे परे ते परे रहने वाला है, वे पुनर्जन्म में नहीं आता है, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बना, तो जरूर आना पड़े। वो आते हैं तब जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी है कलयुग, अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पाप कहते हैं वे तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण, निराकार शिव या श्री कृष्ण, गीता का भगवान कौन, गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है, फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है, इन बातों को कोई मानता नहीं है, तो समझना चाहिए ये अपने धर्म का
नहीं है।
सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा, पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा,
कब लग पड़ेगा?
जब उसको ज्ञान समझ में आएगा। जब तक वो मानेगा नहीं, जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान आके पढ़ा रहा है और हमें स्वर्ग में जाना है, हमने सतयुग में जाना है, तो सतयुग जाना है तो सतयुग बनाना भी पड़ेगा ना। तो जब उसके दिल में आएगा कि मुझे जाना है तो बनाना पड़ेगा, जब उसके समझ में आएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, जो भी बनना है उसके लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। मूल बात ही ये है, इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? अपने आप को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति समझो, वो अवस्था चाहिए। एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते, उसका चेहरा देखा पागल हो गया। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की परवाह थी, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए, फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों को भी की भी महिमा है, किसको गुस्सा करना माना, लौ हाथ में उठाना, लौ हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है, बच्चे कोई काम में नटाते मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, मतलब कहने का है कि शब्द कहाँ कहाँ से बाबा ढूंढ के लाता है, नटाना माना नाट जाना, मना कर देना। आपने किसी को कोई काम करने के लिए कहा, उसने नटा दिया, मना कर दिया, थे नहीं, नटाते शब्द हो गया, तो फिर नटाते के साथ बाबा ने नटवर बना दिया। मतलब कहने नटवर माना जो खेल करने वाला, जिसके लिए जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, जिसका जीवन उसको खेल लगता हो, वो खेल उसे लगेगा ना जो हाँ जी करेगा, जो किसी काम को ना नहीं करेगा, जो ना नहीं करेगा दिल से करेगा तो नेचुरल वो सबको अच्छा लगेगा। तो कहाँ नटवर और कहाँ नटाते, शब्द ढूंढ ढूंढ के लाता है, कहता है मैं मेहनत नहीं करता हूं, बस मैंने जो बताना है बता देता हूं, मैं सोचता नहीं हूं। मतलब इतने सारे शब्द इकट्ठे करना, सोचता नहीं है, कमाल है ना। हाँ, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। नटवर माना हंसते खेलते हुए काम करने वाला, हर टाइम खुशी खुशी। हाँ, मतलब आपको कई बच्चे आपने देखे ऐसे होते हैं, भाई बहू है चाहे बेटा है, खुशी खुशी सारे काम करते फिरेंगे और कोई रोते रहते हैं। हाँ, तो बल कृष्ण के लिए कहते हैं ना, क्योंकि हर टाइम खुश रहता है, नटवर है वो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर, बहुत खुशी और मस्ती में रहना है, मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना, याद कैसी हो, जिगरी हो, दिल से याद करते रहना है, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं, कभी क्रोध में आकर ला हाथ में नहीं उठाना, क्रोध में आकर के कानून अपने हाथ में नहीं उठाना है, किसी सेवा में ना नहीं करनी, कोई भी सेवा करो उसमें ना नहीं करनी है। वरदान रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव, ब्रह्मा बाप समान बनो, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, ब्राह्मणों का आदि, ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो, मध्यम मार्ग को लो, ऐसा कोई ना कहे कि यहां तो राजा ही ठाट हो गया। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है, दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो, और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अव्यक्ति साइलेंस, अव्यक्ति मास चल रहा है, अव्यक्ति साइलेंस, अशरीरी होकर शांत अवस्था में रहना, डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो। कैसे करें? अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से चलनी चाहिए, ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए, वही संकल्प उठे जो होना है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। ये साकार वतन क्या बन जाएगा? सूक्ष्म वतन बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम। चर्चा में।